नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पुलिस शहीद दिवस आज, देश प्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में विभिन्न आयोजन। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज कई स्थानों पर गोवर्धन और अन्नकूट के आयोजन, कुछ जगह ये पर्व कल मनाया जाएगा। और चंबल नदी के जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 28 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। आज पुलिस शहीद दिवस है। 21 अक्टूबर को हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस दिन 1959 में लद्दाख में चीनी सैनिकों के हमले में पुलिस के 10 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों की याद में इसे पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित समारोह में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इधर प्रदेश में भी पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इसमें शिरकत कर शहीद पुलिसकर्मियों के योगदान को याद किया।
पुलिस अधिकारियों ने दुष्कर परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा में उद्यत होते हुए वीर गति प्राप्त की है। इन शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
विभिन्न जिलों में भी पुलिस बल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन में 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसके साथ ही शहीदों के परिजन का सम्मान और अन्य गतिविधियां होंगी। इनमें रक्तदान शिविर और पौधरोपण कार्यक्रम प्रमुख है। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। अब तक 12 प्रत्याशियों की ओर से 17 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न उम्मीदवार लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने कल मांगरोल में प्रमुख बाजारों का दौरा कर मतदाताओं से संपर्क किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। देश में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का एक वर्ष पूरा होने पर जयपुर में प्रदर्शनी लगाई गई है। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नव विधान न्याय की नई पहचान थीम पर 13 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन है। राजस्थान पुलिस की ओर से लगाई गई इस हाईटेक प्रदर्शनी को बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, परिवार सहित देख रहे हैं। इससे नए आपराधिक कानूनों को समझने और पुलिस की कार्यशैली को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। प्रदर्शनी स्थल को थीम आधारित विभिन्न जोन में बांटा गया है, जहां आगंतुकों को तकनीक आधारित वर्चुअल अनुभव रोमांचित कर रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि नए कानून नागरिक और पीड़ित केंद्रित हैं। ये सिर्फ दंड नहीं बल्कि न्याय, संवेदना और सुरक्षा की नई सोच लेकर आए हैं। हिंदी फिल्म प्रसिद्ध अभिनेता असरानी का लंबी बीमारी के बाद कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और वे असरानी के नाम से लोकप्रिय थे। असरानी ने शोले, चुपके चुपके, भूल भुलैया, धमाल और बंटी और बबली जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। असरानी मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे। उन्होंने 5 दशकों से अधिक के सिनेमा करियर में हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। असरानी ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। हिन्दी के अलावा उन्होंने गुजराती सिनेमा में भी योगदान दिया। निर्देशन के क्षेत्र में भी उनकी अदाकारी और जीवंत डायलॉग डिलीवरी हमेशा याद की जाएगी। बारां जिले के सनवाड़ा गांव की सहरिया बस्ती में बदलाव की नई कहानी लिखी गई है। ये पहला अवसर है जब यहां के घरों में दीपोत्सव बिजली की रोशनी के बीच मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस सकारात्मक बदलाव का जिक्र करते हुए पीएम जनमन योजना को इसका श्रेय दिया है। बिजली विभाग की अधिशासी अभियंता कालूलाल मीणा ने बताया कि ट्रांसफार्मर लगाकर बस्ती के सभी परिवारों को बिजली उपलब्ध कराई गई। जिला कलेक्टर रोहिताश्व तोमर ने बताया कि बिजली से अपने घरों को रोशन होता देख लोग काफी खुश हैं।
पहली बार उन लोगों ने अपने घरों में लाइट देखी तो उन लोगों के चेहरे पे इतनी ज्यादा खुशी थी कि उससे ज्यादा खुशी मुझे अभी तक नहीं हुई है। और सभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए बिल्कुल धन्यवाद दे रहे थे और उनका कहना था कि हमारे लिए तो आज ही दिवाली है। तो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ और तभी हो पाया जब जनमन जैसा कार्यक्रम बारां जिले में बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और उससे जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति उसको इसका फायदा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में रोशनी का पर्व दीपावली पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। घरों, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की गई। धार्मिक स्थलों पर भी दीपावली पर दर्शनार्थियों की कतारें लगी रहीं। वहीं लोगों ने परिवार और मित्रों के साथ बाजारों की आकर्षक सजावट को निहारा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही रामा श्यामा और स्नेह मिलन का सिलसिला शुरू हो गया। सवाई मधोपुर में देर रात तक बाजारों में भीड़ रही। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर व्यापक रूप से आतिशबाजी की गई।
शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर धन वैभव और सुख समृद्धि की कामना की गई तथा जमकर आतिशबाजी की गई। रणथंभौर रोड स्थित छोटे बड़े होटलों में भी देशी विदेशी सैलानियों ने जमकर आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आकर्षक रूप से सजे शहर को देखने के लिए देर रात तक शहरवासियों की भीड़ देखी गई। अल सुबह से ही लोग एक दूसरे को रामा श्यामा करने और बधाइयां देने तथा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने निकले हैं। दोपहर तक अमावस्या तिथि होने के चलते गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के आयोजन कल होंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
दीपोत्सव की श्रृंखला में कई स्थानों पर आज गोवर्धन पूजा की जा रही है, वहीं कुछ जगह ये पर्व कल मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में कल अन्नकूट महोत्सव रखा गया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आज अन्नकूट उत्सव की धूम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थानीय नागरिकों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा पहुंचे हैं।
आज सुबह करीब 6 बजे मंगला जाकी के दर्शन हुए। इसके बाद दोपहर में विशेष श्रृंगार से सजी रजी गौ माताएं ग्वाल बाल के साथ मंदिर की 3 परिक्रमा पूरी करेगी। इस दौरान मंदिर के ग्वाल बाल ईड गायन करते हुए गायों के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। मंदिर के तिलकायत द्वारा दोपहर 4 बजे के बाद से गोवर्धन पूजा और गो पूजन की जाएगी। बाद में खेकरे के तहत ग्वाल बाल गो माताओं के साथ गो क्रीड़ा करेंगे। वहीं रात्रि 9 बजे श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट के दर्शन खुलेंगे, जबकि लूट के दर्शन करीब 11 बजे खुलेंगे। इस दौरान भील आदिवासी श्रद्धालुओं द्वारा अन्नकूट की भोग सामग्री को लूटा जाता है। उत्सवों का आनंद लेने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश भर से श्रद्धालुओं के नाथद्वारा आने का क्रम जारी है। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
चंबल नदी के जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 28 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी शामिल होंगे और चंबल के चारों प्रमुख बांधों में उपलब्ध पानी का आकलन किया जाएगा। इसी के आधार पर यह तय होगा कि रबी सीजन के दौरान किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। अंतर्राज्यीय तकनीकी कमेटी के सचिव सत्येन्द्र पारिक ने बताया कि जल बंटवारे के साथ ही नहरों के रखरखाव और मरम्मत को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान को पत्र लिखकर रबी सीजन के लिए पानी छोड़ने पर सहमति जता दी है। फिलहाल मध्य प्रदेश की ओर से 3,900 क्यूसेक पानी का प्रवाह किया जा रहा है। इससे राजस्थान की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, जबकि मध्य प्रदेश में भी इतनी ही भूमि को पानी मिलता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस शहीद दिवस आज, देश प्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में विभिन्न आयोजन। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज कई स्थानों पर गोवर्धन और अन्नकूट के आयोजन, कुछ जगह ये पर्व कल मनाया जाएगा। और चंबल नदी के जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 28 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।